मंथन।
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए टिकाऊ खेती के लिए उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय उर्वरक संघ के महानिदेशक सुरेश कुमार चौधरी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारत में जब हम सतत खेती या टिकाऊ खेती की बात करते हैं तो उसमें संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के असंतुलित इस्तेमाल से हम बहुत सी पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि अधिक उत्पादन की लालसा में जब किसान फर्टिलाइजर्स के असंतुलित उपयोग करता है, जिसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो असंतुलित होते हैं, तो उसका सीधा असर मिट्टी के उपजाऊपन पर होता है, जमीन के अंदर जो भूजल है उस पर होता है, और भी तमाम इससे हम चुनौतियां या समस्याएं पैदा होते हुए देख पाते हैं। ये जरूरी समझा गया कि किसान फर्टिलाइजर्स के संतुलित इस्तेमाल को अपनाएं और टिकाऊ खेती की तरफ रुख करें, और इस दिशा में इन दिनों किसानों में जागृति को लेकर कई मुहिम चल रही हैं। इस पर हम विस्तार से आज कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार।
सबसे पहले हम आपसे एक मूल प्रश्न से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे कि जो हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर के टर्म को कहते हैं, ये वास्तव में है क्या उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, और वास्तव में जब उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग होता है तो उससे कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हम देख पाते हैं?
बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जिसको कि हम हिंदी में उर्वरकों का संतुलित उपयोग कहते हैं, देश में अलग अलग तरह के उर्वरक उपयोग में लाए जाते हैं
जी,
लेकिन उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जो फर्टिलाइजर्स है उनको हम बल्क फर्टिलाइजर कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में जरूरी होते हैं फसल उत्पादन के लिए। अब इनका जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रायः यह देखा गया कि नाइट्रोजन का जो बड़ा पॉपुलर फर्टिलाइजर है जिसको यूरिया कहते हैं, तो यूरिया का किसान ज्यादा करते हैं, अनेक कारण है उसके, लेकिन उसकी तुलना में फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल कम करते हैं। लगातार कई वर्षों तक इस तरह का असंतुलित इस्तेमाल करने से मिट्टी में अनेक तरह की समस्याएं निर्माण होती है, जैसे मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बड़े सारे न्यूट्रिएंट की मिट्टी में कमी पाई जाना। उसका कारण यह है कि हम एनपीके इस्तेमाल करते रहे, मतलब यूरिया डीएपी या एनपीके इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण अन्य पोषक तत्वों की कमी देखने को मिली है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, इसका एक और बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि जब नाइट्रोजन अधिक मात्रा में उपयोग की जाती है फास्फोरस पोटेशियम की तुलना में, तो मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं पौधों की, उसके नीचे वाला क्षेत्र जो है था, जिसको राइजोस्पियर कहते हैं, उस राइजोस्पियर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की धीरे धीरे कमी होना शुरू होता है। अभी वो कमी बहुत जगह पाई जाती है। तीसरा जो क्लियर कट हमको दिखाई देता है वो ये है कि पहले जब उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता था तो 1 किलो उर्वरकों का इस्तेमाल करने से लगभग 15 किलो के आसपास उत्पादन आता था। अब उसी 1 किलो उर्वरक इस्तेमाल के बाद में 4.5 किलो का उत्पादन मिलता है। इसको रिस्पॉन्स रेशियो कहते हैं। ये भी समय के साथ साथ घटता जाता है। और चौथा जो बड़ी समस्या ये आई कि अंधाधुंध इस्तेमाल करने से और बहुत अधिक सघन खेती करने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। ये 4 चिंता विषय है असंतुलित व्यवहार करने से।
जब हम उर्वरक की उपयोग दक्षता यानी उसकी जो एफिशिएंसी के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो अगर हम इसके कई सर्वे और आंकड़ों को देखें तो ये भारत की खेती में कहा जाता है कि 30-40% ही ये दक्षता है, जिसको कई प्रयासों से बढ़ाकर लक्ष्य है कि इसको कम से कम 70-80% तक हम जल्द से जल्द कर पाए। तो क्या ऐसे में करने की जरूरत है जिससे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी एफिशिएंसी किसान सही तरह से उसके इस्तेमाल को कर पाए, और जैसा कि आपने जिन चुनौतियों का जिक्र किया या संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का जिक्र किया उसको सही तरह से कर पाएं, जिससे कि हम 70-80% के इस लक्ष्य को पा सकें?
मुख्यतः बात करें तो नाइट्रोजन के लिए हम अधिकतर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया की उपयोग दक्षता लगभग 40% है, और ये पिछले 60-70 सालों में जब से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तब से ये 40% ही है, उससे ऊपर जा नहीं पाए। इसी तरह से सिंगल सुपर फॉस्फेट या फॉस्फेट के और जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनकी उपयोग दक्षता या यूज एफिशिएंसी लगभग 20% है, और पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो महत्वपूर्ण हमारा फर्टिलाइजर है म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसकी उपयोग दक्षता लगभग 80% के आसपास होती है। जो अधिकतर इस्तेमाल हमारा यूरिया होता है उसकी उपयोग दक्षता ही 40% है। फास्फोरस 20% है, लेकिन बाकी बचा हुआ फास्फोरस मिट्टी में वो जाता कहीं नहीं है, फिक्स फॉर्म में रहता है और समय के साथ में धीरे धीरे उपलब्ध होता रहता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं देश में जहां फास्फोरस काफी बिल्डअप हो गया है और वहां पर अब ये सिफारिश की जा रही है कि किसान भाई अगर खरीफ में इस्तेमाल कर रहे हैं फास्फोरस तो रबी में ना करें, और रबी में कर रहे हैं तो फिर खरीफ में ना, एक सीजन छोड़ दे, या फिर खरीफ रबी में एक साल में अगर कर दिया तो दूसरे साल पूरे साल इस्तेमाल न करे, तो इससे फास्फोरस जो मिट्टी में बिल्टअप हुआ है उसको मौका मिलता है फसल उसको ले सके। पोटेशियम में ऑलरेडी उपयोग 80% के आसपास है। आपके सवाल का दूसरा जो भाग है कि ऐसी कौन सी चीजें हो सकती जिससे उपयोग दक्षता बढ़े, तो इसमें तरल उर्वरक जो आते हैं ना, तरल उर्वरक वो चाहे नाइट्रोजन के हो, फास्फोरस के, पोटेशियम के हो, उनकी उपयोग दक्षता काफी हाई है। ड्रिप इरिगेशन के साथ जब तरल उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो उपयोग दक्षता 80-90% तक चली जाती है। इसी तरह जो नैनो फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन हमारे हैं जिसको कहते हैं नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, बहुत बड़ी उपयोग दक्षता है
जी।
और कोई भी फर्टिलाइजर जब उसको स्प्रे किया जाता है तो उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाती है।
तो इसमें हम नीम कोटेड यूरिया की भी काफी चर्चा सुनते हैं, तो क्या ये भी थोड़ा प्रभावशाली है जिससे कि हम जो बड़ा हमारा मिट्टी को होने वाला नुकसान है उसको कम कर सकते हैं?
बिल्कुल, जब नीम कोटेड यूरिया 2014-15 में जब बात सोची गई, हालांकि इसके बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत पहले रिसर्च की थी, 1980-1985 के आसपास रिसर्च शुरू हुई थी और 90 के दशक में ये रिसर्च कंफर्म भी हो गई थी कि नीम कोटिंग करने से उपयोग दक्षता बढ़ती है क्योंकि उसका नाइट्रिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन डिले होने की वजह से दक्षता बढ़ती है क्योंकि वो धीरे 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 नाइट्रोजन रिस के मिलती है
जी।
तो ये नीम का जो तेल है उस तेल के अंदर तीन तरह के तत्व होते हैं, एक होता है निम्बिन, दूसरा होता है एजरिडिक्टिन और तीसरा एक होता है सेपोनिन। ये तीन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो जिम्मेदार होते हैं कि यूरिया का जो कण मिट्टी में गिरने के बाद में उसका नाइट्रेट में जो रूपांतरण होता है, क्योंकि यूरिया तो अमाइड फॉर्म में है, केमिस्ट्री में अमाइड फॉर्म होता है, तो अमाइड फॉर्म से जब नाइट्रेट फॉर्म में जाता है तो वो नीम की कोटिंग कर देते तो वो जल्दी नहीं हो पाता, धीरे धीरे होता है। अन्यथा क्या होता है कि जैसे यूरिया डाला तुरंत हाइड्रोलिसिस होकर के वो सारा का सारा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितना नाइट्रेट लेना होगा पौधे को उतना तो पौधा ले पाएगा, बाकी का नाइट्रेट लीचिंग होकर के नीचे चला जाता है जमीन के नीचे, या नाइट्रस ऑक्साइड बनकर के उड़ जाता है। तो उसका जो दुरुपयोग हो रहा था उसको रोकता है ये नीम कोटेड यूरिया। इसलिए 2014 के बाद में ये तय किया गया कि सारा जो यूरिया भारत में आएगा या बिकेगा या जो बनाया जाएगा वो नीम कोटेड होगा।
मिट्टी की समय समय पर जांच बहुत जरूरी है, इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड कि किसान ये पहचाने कि मिट्टी में उनके कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके अनुसार वो संतुलित खेती को अपनाएं, तो क्या ये आवश्यक है इस बारे में किसानों में जागरूकता कि अपनी मिट्टी की जो सॉइल हेल्थ जिसे हम कहते हैं उसकी जरूरत को समझें और उसकी जाँच में अपनी हिस्सेदारी निभाएं?
मिट्टी की जांच होनी ही चाहिए, मिट्टी की जांच करते रहें किसान भाई। भारत सरकार ने ये अभियान चला करके एक बहुत बड़ा सॉइल हेल्थ मिशन भी बनाया, सारे किसान भाइयों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिए। सॉइल हेल्थ कार्ड में बड़ा सिलसिलेवार लिखा गया है, उसमें जितने पैरामीटर्स है उसमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नेशियम, सल्फर, उसके बाद में आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और मेजर न्यूट्रिएंट, इनके बारे में विस्तार से जानकारी उसके अंदर दी गई कि आपके मिट्टी के नमूने में कौन से तत्व कितने प्रमाण में हैं, जो फसलें आप लेते हैं वो उन फसलों को कितनी आवश्यकता है, और मिट्टी में उपलब्ध तत्व और जो पौधे को जो जरूरत है उसकी मात्रा, दोनों के अंदर इसमें से उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो फिर बची हुई मात्रा आपको फर्टिलाइजर के द्वारा आपूर्ति करनी है। लेकिन जो मात्रा आपूर्ति करने वाली होती है उससे कहीं अधिक मात्रा किसान भाई इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके कारण बड़ा असंतुलन सा बन जाता है। कुछ राज्य जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा
जी,
जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य है जहां पर उनकी जो जोत है, उनकी जो काश्त है या उनकी जो लैंड होल्डिंग है उससे अधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कारण असंतुलन निर्माण हो जाता है। इसको समझने की आवश्यकता है, इसके बड़े दूरगामी और बहुआयामी परिणाम मनुष्य जाति पर पड़ते हैं, केवल फसल उत्पादन की बात नहीं है। मिट्टी में रिस कर जो नाइट्रेट जाता है वो भी तो हमारे ग्राउंड वाटर में जाके मिलता है, उसके कारण भी समस्याएं निर्माण होती है। इसी तरह से यूट्रिफिकेशन कहते हैं, फास्फोरस जो एक्यूमुलेटेड है वो बह करके तालाबों में, झीलों में जाके मिल जाता है, उसके कारण भी दिक्कतें आती है, उसके कारण वहां की वनस्पति भी खराब हो जाती है और पर्यावरण को भी, अगल बगल के वातावरण में भी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। इसलिए बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करना आवश्यक है और जहां संभव हो लिक्विड फर्टिलाइजर से काम चलता हो तो वो जरूर करें। इसी तरह से एक दो बातें और भी कहना चाहूंगा कि एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि उर्वरकों का इस्तेमाल तो करें लेकिन साथ में गोबर की खाद, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करने, बायो फर्टिलाइजर एक और बढ़िया सा जरिया हमारे पास में है, बायो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना आवश्यक है। जब ये सब समेकित तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी खराब नहीं होगी। अपितु ये देखा गया कि जब आप कन्वेंशनल बल्क फर्टिलाइजर के साथ में जब ऑर्गेनिक को डाल देते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी अच्छी रहती है, खेती भी अच्छी रहती है, मिट्टी का स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होता। 10-10, 20-20 साल के हमारे रिजल्ट दिखाते हैं कि इतना सब करने के बाद भी पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होता, लीचिंग भी नहीं होती और बहुत अच्छी तरीके से आप खेती कर सकते हैं, टिकाऊ खेती कर सकते हैं।
डॉक्टर चौधरी, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम इन दिनों किसानों में एक जागरूकता के तौर पर देख रहे हैं कि अब डिजिटल एप्स के जरिए उर्वरकों की सही गणना की ओर किसान रुख कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया है कि प्रति एकड़ अगर सही उर्वरकों की गणना की जाती है, उसका सॉइल रिपोर्ट बेस्ड फार्मिंग की जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रति एकड़ लगभग 2,000 से 3,000 की बचत किसानों को होती है। तो कितना जरूरी है कि जो तकनीकी स्वीकार्यता है उसको भी किसान समझते हुए बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की ओर बढ़े।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इनका जो NRM डिवीजन है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में है, वे लगातार इस बात का प्रयास करते हैं और जो रिपोर्ट है, उनकी जो स्टडी हुई है, उनके जो अध्ययनों के आधार पर हमने ये पाया है, एक कहते हैं सॉइल टेस्ट बेस्ड क्रॉप रिकमेंडेशंस, मतलब मिट्टी में जितनी मात्रा उपलब्ध है तत्वों की, पोषक तत्वों की, उसके आधार पर सिफारिशें करना, मतलब अंधाधुंध तरीके से नहीं चलना। मतलब जैसे सोचते हैं हम कि अगर गेहूं उगाना है तो 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटाश देना है, वैसा करने की बजाय मिट्टी में कितना उपलब्ध है उसके अनुसार फिर प्रिस्क्रिप्शन किया जाए तो उसमें काफी फर्टिलाइजर की बचत होती। जैसा आपने बताया, लगभग 2,500 रुपए तक प्रति एकड़ हम पैसे भी बचा पाते, लागत में बचत हो पाती है, क्योंकि इतने प्रिसाइज और बड़े कॉस्टली फर्टिलाइजर्स है। और फर्टिलाइजर में आपको पता है कि पोटेशियम हम पूरा बाहर से लेते हैं, फास्फोरस का एक मोटा हिस्सा हमारा प्रदेश से आता है। यूरिया के केस में भी, हालांकि हम अपने देश में बनाते हैं, लेकिन उसको लगने वाली गैस और उसको लगने वाले और भी एसिड्स वगैरह हम प्रदेश से लाते हैं, तो ये बहुत ही महंगा सौदा है सारा का सारा। इसका इस्तेमाल बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करना आवश्यक है।
डॉक्टर चौधरी, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में जब एक फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया था तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो उनका रासायनिक उर्वरकों का दुरुपयोग न सिर्फ हमारी खेती को बल्कि धरती की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो रासायनिक उर्वरकों का दुरुपयोग एक जहर के तौर पर जब मिट्टी में मिलता है तो हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारे जलाशयों को दूषित करता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि कैसे ये जो रासायनिक उर्वरकों का दुरुपयोग है या इनका संतुलित इस्तेमाल न करना है, ये कैसे हमारी मिट्टी के अलावा हमारे पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य था वो बिल्कुल वेलकम स्टेटमेंट है। तह में जाकर के उन्होंने बात कही, क्योंकि मिट्टी हमारी माता है और उसका अगर हम सही ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो सिर्फ पोषक तत्वों तक सीमित नहीं है, वो घास जानवर भी खाते हैं, जानवरों का दूध हम पीते हैं, वो सीधा अन्न हम भी खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका परिणाम। वन हेल्थ नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वन हेल्थ, उसमें मिट्टी की हेल्थ, जानवरों की हेल्थ, इंसानों की हेल्थ, पर्यावरण की हेल्थ, संपूर्ण पर्यावरण का स्वास्थ्य संपूर्ण अगर देखना है तो मिट्टी से शुरुआत करनी होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा उसमें कि हम जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। किसी भी चीज का अधिक इस्तेमाल करने से उससे हमको हानि ज्यादा होती है और फायदा कम होता है। वही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, जो बिल्कुल वेलकम स्टेटमेंट है। सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और भारत सरकार के सभी विभाग इसको वेलकम करते हैं, इस स्टेटमेंट को, और किसान भाइयों को भी इसकी तह तक जाना होगा, इसे समझना होगा और वो जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको अपनाना भी होगा।
डॉक्टर सुरेश चौधरी, बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को न सिर्फ जानकारी दी, अपना एक विश्लेषण भी हमारे श्रोताओं के समक्ष आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अभी आप सुन रहे थे टिकाऊ खेती के लिए उर्वरकों के संतुलित प्रयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय उर्वरक संघ के महानिदेशक सुरेश कुमार चौधरी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।
मंथन।